Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey!
श्री कृष्ण बलराम की जय हो. नंदगांव धाम की जय. यशोदा माई की जय. नंद महाराज की जय. जय श्री राधे श्याम. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा. तो आप सबका श्री नंदगांव में स्वागत है. नंदगांव बहुत ही पवित्र स्थली है. श्री कृष्ण भगवान के बचपन का घर है ये नंदगांव. और बरसाना ये सब श्री वृंदावन में आता है. श्री वृंदावन जो है वृंदावन वो 20 कोस का है. आजकल का जो वृंदावन है ज्योग्राफिकल वो छोटा सा है. बहुत उधर 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से. लेकिन जो प्राचीन वृंदावन है वो पूरे ब्रज में जो 84 कोस है उसमें से 20 कोस वृंदावन में है. तो वो वृंदावन में गोवर्धन भी है, यमुना भी है, नंदगांव, बरसाना और जावट। जावट यानी राधारानी का ससुराल, जहाँ उसकी शादी हुआ था। तो ये सब जो है अंतरंग क्षेत्र में आता है श्री वृंदावन धाम के। उसका इतिहास ऐसा है कि परजन्य महाराज नाम के राजा थे, उसके पहले देवमीड राजा थे। देवमीड़ा सुनाई पड़ रहा है क्या उधर? देवमीड नाम के राजा थे, उनके पुत्र हुए परजन्य। तो परजन्य ने, परजन्य महाराज बड़े संत थे, भगवान के ग्वाल बाल थे। उन्होंने गोकुल में तपस्या किया, बहुत प्रचंड तपस्या किया, और वहीं पर उन्होंने राज्य बनाया अपना। वहां पर उनको 8 पुत्र हुए, नहीं 5 पुत्र हुए, सॉरी 5 पुत्र हुए। सबसे पहले उपनंद बाबा, उसके बाद में अभिनंद बाबा, उसके बाद में नंद बाबा, उसके बाद में सुनंदन, उसके बाद में सुनंदन, उसके बाद में नंदन चाचा। उपनंद, अभिनंद, नंद और सुनंद, सुनंद और फिर नंदन चाचा, ऐसे 5 भाई, बीच के नंद बाबा। तो ये 5ों बड़े गुणवंत थे, और उपनंद बाबा को परजन्य बाबा ने अपने निवृत्त होने के समय राज्य सौंप दिया। लेकिन उपनंद बाबा जानते थे कि हमारे में सबसे श्रेष्ठ जो है वो नंद है, सर्वगुण में संपन्न है, सर्वश्रेष्ठ सर्वयोग्य जो है वो नंद है। इसलिए बड़े पुत्र होने के नाते राज्य उनके पास चला आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बड़े भाई को सौंप दिया, छोटे बीच वाले भाई को सौंप दिया। ऐसा कभी सुना है क्या आपने? आज तक कभी सुनने को नहीं मिलता ऐसा। उल्टा इतिहास ऐसे कहता है कि जो जिसका राज्य नहीं है उसको वो छीन के राज्य ले लेता है, उसको मार कर, है ना। औरंगजेब ने अपने पिताजी को मार कर जेल में डालकर उसको राज्य ले लिया। कितना इतिहास है हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका इतिहास है कि जो अपना नहीं बनता है वो भी लोग छीन लेते हैं अधिकार से। कंस ने भी वही किया, अपने पिताजी को अरेस्ट करके, ऐसा मतलब ऐसा प्रेम से अरेस्ट नहीं किया, वो बदनामी गाली देते हुए अरेस्ट करके जेल में डाल दिया उनको, और पूरा मथुरा का राज्य अपने हाथ में ले लिया बलपूर्वक। लेकिन जब हम प्रेम और भक्ति होती है, वहीं पर यहाँ पर अद्भुत दिखाई पड़ता है। तो उपनंद बाबा ने अपने को पूरे राज्य प्राप्त हुआ वो नंद बाबा को दिया, और फिर नंद बाबा को, नंद बाबा यहाँ पर आए और नंदगांव में रहने लगे अपने 5ों भाइयों के साथ। उन 5ों भाइयों का इतना स्नेह था एक दूसरे के प्रति, तो एक साथ में रहने लगे। फिर हर एक भाई को 2-2 बच्चे हुए। तो कृष्णा और बलराम जी नंद बाबा को प्राप्त हुए। वैसे बलराम जी तो रोहिणी के पुत्र हैं वसुदेव के, लेकिन रहे तो इनके पास ही। और कृष्ण भगवान भी देवकी और वसुदेव के हैं, लेकिन ये इनके पास ही पले। तो लौकिक दृष्टि से कृष्ण बलराम इनके पुत्र हैं, और उपनंद बाबा, अभिनंद बाबा के 2 और सुनंद और नंदन चाचा के 2-2, तो टोटल 8 हो गए ना। तो ये 8ों लोग जो है ये कृष्ण के अष्ट सखा के रूप में प्रसिद्ध हुए। वहाँ पर कैसा है बरसाने में, वहाँ पर 9 भाई हुए, आपको मैं बता नहीं पाया, समय नहीं मिला। वहाँ पर भी महीभानु महाराज थे, उनको 9 पुत्र हुए, पहले 4, बीच में वृषभानु महाराज, फिर अगले 4। और हर एक भाई जो है वो कमलाकार जो गांव है, बीच में समझो जो कमल है बड़ा, तो बीच में बरसाना है, उसके 8ों ओर 8 पंखुड़ियाँ हैं उस कमल की, तो 8 गांव हैं सखियों के, जहाँ पर 8 भाई रहा करते थे, और एक एक भाई को एक एक पुत्री हुई, तो 8 पुत्रियाँ हुई ना टोटल। तो वो राधा रानी के अष्ट सखी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनके नाम क्या है बताइए? ललिता, विशाखा। देखो इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, ये राधा कृष्ण है, ये कृष्ण, कैसे बताएं आपको भी, ये कृष्ण है, राधा है, ठीक है। राधा के बाजू में कौन है? विशाखा देवी, कृष्ण के बाजू में कौन है, ललिता देवी। तो ललिता और एक ता आएगा उसके बाजू में, चंपकलता उसके बाजू में आएगा, ललिता चंपकलता। इधर कौन है, विशाखा बाजू में, और एक हा आएगा, इंदुलेखा। सिंपल है याद करने के लिए। इंदुलेखा के बाजू में एक ट्विन सिस्टर आएंगे, रंग देवी सुदेवी, पहले रंग देवी बाद में सुदेवी, हो गया। इधर क्या हो गया, चंपकलता, ललिता और चंपकलता, उसके आगे तुंग चित्रा देवी और तुंग विद्या, चित्रा देवी और तुंग विद्या। समझ में आया, ऐसे याद रखना है उसको, हमेशा ठाकुर जी का दर्शन मन में याद रखना है, उसके अनुसार गोपियों को याद रखना है, कभी भूलेंगे नहीं आप उसको। तो वो अष्ट सखियाँ, आठ गांव में उनका जन्म हुआ, उनका एक एक गांव है, जैसे सुनहरे में, स्वर्णपुर में सुदेवी का जन्म हुआ, डभारे में रंग देवी का जन्म हुआ, लेकिन वो ट्विंस है, एक ही साथ में जन्म हुआ उनका, ट्विन मतलब ट्विंस नहीं है, एक ही दिन का जन्म है उनका, माता पिता अलग हैं। चिकसोली में चित्रा देवी का जन्म हुआ, ललिता देवी का जन्म ऊंचे गांव में हुआ, विशाखा का गांव आंजनोक में हुआ, और चंपकलता का गांव करेला, करेपुर, और राखोली नाम का गांव एक एक गांव है, मुझे एक याद नहीं आ रहा है, वो है तुंग विद्या का गांव, वो शायद रंगपुर है, रंगपुर, डभारा रंग देवी का गांव, डभारा। एनीवेज, सो यहाँ पर, वहाँ पर सब अलग अलग गांव में रहे, लेकिन यहाँ पर कृष्ण के प्रेम के वजह से सब भाई एक ही गांव में रहे, राष्ट्र सखा भी एक ही गांव में रहे। तो नंदगांव दो भाव के लिए बहुत प्रसिद्ध है, एक है साख्य भाव यानी फ्रेंडशिप, और दूसरा है वात्सल्य भाव, माता पिताओं का प्रेम। उसमें कई बड़ी गोपियाँ और बड़े गोप भी हैं उम्र वाले, उनका वात्सल्य भाव है कृष्ण बलराम के प्रति। और जो फ्रेंड्स हैं उसके अंदर तीन ग्रुप्स हैं, एक है समावयस्क का यानी उसी उम्र के एकदम ऑलमोस्ट वन डे हाफ डे फ्यू आवर्स, एक है उनके छोटे उम्र के, और एक है थोड़े से बड़े। थोड़े से बड़े जो हैं वो भी मित्र हैं उनके, लेकिन वो थोड़ा उनका देखभाल भी करते हैं, मतलब यू नो यंगर ब्रदर कैसे होता है, खेलते साथ में उसमें, लेकिन कभी अभी इधर जाना नहीं है, उधर गिर जाओगे, इधर नहीं आना, मेरा हाथ पकड़ना, तो वो वात्सल्य भाव है। और साथ वाले जो है वो हर प्रकार की डांट लगाते हैं, हर प्रकार का चीटिंग करते हैं, हर प्रकार का मजाक करते हैं, हर प्रकार का बाल खींचते हैं, चीटिंग की सब करते हैं, उनमें कोई संकोच नहीं है उसमें। कंधे पे चढ़ते हैं, कंधे पे चढ़ के कूदते हैं, फिर कृष्ण बलराम के कंधे पे चढ़कर राउंड लेते हैं, गेम में हारते ना कभी कृष्ण बलराम की पार्टी, जब पार्टी हार जाती है तो उसको जीतने वाली पार्टी को सैर कराना पड़ता है, तो उसमें सब लोग कृष्ण बलराम के कंधे पे चढ़ जाते हैं, एवरीथिंग दे डू। तो समवयस्क है, और एक है छोटे से, और छोटे से जो होते हैं तो वो हमेशा सेवा के भाव में रहते हैं। तो कैसे तुम जो नंद बाबा के घर में अभी यशोदा माई कृष्ण बलराम को नहला रही है समझो, तो वह कैसे खड़े हो जाते हैं, मतलब कुछ सेवा चाहिए उनको, तो यशोदा माई बोलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो ये कुछ वस्त्र पकड़ लो, ये पात्र पकड़ लो, ये अलंकार पकड़ लो, जो मैं मांगूंगी तो दे देना मुझे। इस तरह से छोटे मोटे सेवा में लगा लेते हैं उनको, इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, वो अलंकार लेके आना, भोजन लेके आना, बीच में लाला बोल रहे भूख लग रही है जाओ मिठाई ले आओ डाल दो उनके मुंह में, ऐसे सारे काम जो है स्पॉन्टेनियस होते हैं वो छोटे वाले करते हैं। जब कृष्ण भगवान गोपियों के वस्त्र को चुराने गए थे ना, तो एक अलग प्रकार के गोपों को लेके गए थे, अकेले वो जान मतलब क्या सुजान यानी समझदार हो गए थे, अकेले समझदार वय में वो अकेले थे, बाकी सारे जो थे ना वो रेंगने वाले बालक थे, समझ में आया को, क्रॉलिंग बेबीज, स्मॉल बेबीज उनको लेके गए थे, उनको पता नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहे हैं, कौन किसके वस्त्र छीन रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। बड़े बच्चे तो समझते अरे क्या कर रहे हैं तू इस जानबूझ के वो वस्त्र हरण लीला में, मतलब चीर हरण की लीला में एकदम छोटे से बालकों को लेके गए थे, जैसे वो जमुना किनारे गए, अपने बालक अपने अपने खेल में मग्न हो गए, और कृष्ण भगवान फिर चढ़ गए कदम के पेड़ के ऊपर, और सबके वस्त्र चुरा लिए उन्होंने, चीरहरण लीला। कल गए थे ना आप लोग दर्शन करने के लिए। तो ये अलग अलग सखाओं का भाव है, और आचार्यगण संतगण लिखते हैं कि ये ग्वाल बाल जो है कितने भाग्यवान है, ये लोग इतने कृष्ण के पास में है वो, क्या नहीं करते वो कृष्ण के साथ। अरे दुनिया भर के देवता लोग जो होते ना, वो नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्गिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, सारे मंत्र बोलने पड़ते हैं उनको, तब जाके भोग लगता है, बहुत देर रुकना पड़ता है, फिर घंटी बजाते हैं, फिर भोग निकालते हैं, फिर खाते हैं महाप्रसाद के रूप में। अरे ये तो कृष्ण के मुंह से निकाल के खाते हैं, हमको चाहिए, अकेले खा रहे हो, दे दो हमको, ऐसा प्रेम है इनका। इसके लिए देवता लोग सोचते हैं, संत लोग सोचते हैं कितने भाग्यशाली है ये, क्या किया है इन्होंने इतने पुराने जन्म में जो इतना उनको भगवान के साथ प्रेम मिला है, सान्निध्य। कोई देवता ने समझो ब्रह्मा ने भोग लगाया और बीच में एक लड्डू खा लिया खाते लगाते लगाते, तो ब्रह्मा जी को दंड मिलेगा, हाँ सजा मिलेगी बिल्कुल, क्योंकि ऑफिशियल मामला है, उन्हें पोस्ट दिया है उधर, नियम का पालन करो अच्छी तरह से। लेकिन वो समझो ब्रह्मा जी ने भोग लगाया समझो, और इधर से मधुमंगल आया और लगाते लगाते ये लड्डू खा लिया उसने, भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, और बोलेंगे और एक लड्डू खाऊंगा चुपचाप बैठ। भावी ऐसा है, हाँ। दोस्त होते हैं तो वो जूठा खाते हैं एक दूसरे का, इधर का डब्बा छीन लेते हैं, जूठन खाना ये सबसे प्रेम का लक्षण है, अगर किसका प्रेम है तो ही वो जूठा खा सकता है। तो ये तो हमेशा जब भी बैठते हैं जमुना किनारे में तो एक दूसरे का जो है सब छीन के ही खाते रहते हैं, खास करके ज़्यादा मूड आ गया तो फिर इसका डब्बा ही छीन लेते हैं, और डब्बा फिर यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ कैच करते हैं, बेचारा भागता है दूसरा वाला डब्बे वाला, वो इधर से उधर भागते रहता है, उधर से एक फेंक के एक लड्डू खाया दूसरे को फेंक दिया, फिर दूसरा भाग रहा है उसके पीछे, ऐसा सुंदर वातावरण है। और श्री कृष्ण भी वैसे ही हैं, वो भी अपने भक्तों के अपने मित्रों के मुख से अंदर घुसा हुआ खाना भी निकाल के खाते हैं, ऐसा प्रेम है उनका। मतलब आपने एक लड्डू आधा खा लिया है, आप खा रहे हो तो वो मुंह खोल के उधर से निकाल के खाएगा, हम बोलेंगे ई ऐसे करेंगे, लेकिन वो उनमें कोई संकोच नहीं है, प्रेम होता तो कोई संकोच नहीं होता है। फिर वो सब लोग क्या क्या करेंगे, मेंढक बन के ऐसा कूद के दिखाएंगे यमुना किनारे में, मेंढक कूद रहा है समझो, जमीन जमीन से कूदते कूदते ऐसा यमुना में प्रवेश कर रहा है, तो सारे उसके पीछे कृष्ण बलराम ग्वाल बाल सब मेंढक बन के जमीन पानी में कूदेंगे। फिर बंदर कैसे है, ऐसा ऐसे हिलाते ना ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे झाड़ा को हिलाएंगे, फिर पेड़ में कूदेंगे, पेड़ से जमीन पानी में कूदेंगे, फिर ऐसे आकाश में बड़े पंछी आके घूमते ना, तो ये ऐसे पंछी की छाया के साथ में ऐसे घूमते जाते हैं, उसका पीछा करते हैं, छाया गिर रही ना देखो पंछी जा रहा है, तो वो छाया के पीछे 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 भागते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं वो, वेरी एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। और उस समय ऐसा था कि नंदगांव में, हाँ सब लोग सुन रहे ना, नंदगांव में उधर गोवर्धन में बरसाने में वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे कि वो पेड़ की शाखाएं मथुरा तक पहुंचती थी, सोच सकते हैं आप, समझो ये पेड़ है समझो इसकी शाखा मथुरा तक पहुंची है, तो यहाँ पर पेड़ पे चढ़ेंगे तो मथुरा उतर सकते हैं आप। ऐसे अनेक पेड़ थे अनेक, तो ये लोग इतनी मजा करते थे, इतनी मजा करते थे, जब गौचारण को निकलते थे ना तो कभी कभी मूड आया तो वे कहेंगे चलो सब लोग पेड़ पे चढ़ जाओ, और गाय नीचे चल रही है, हाँ एरियल सुपरविजन ऊपर से देख रहे हैं, गाय चल रही है और ये लोग ऊपर से यहाँ से वहाँ कूदते यहाँ से कूदते, ये शाखा से वो शाखा से गाय को देखते हुए शुक्र से कृष्ण बलराम कूद रहे, चलो अभी अरे वृंदावन आ गया उतरो उतरो, सब वृंदावन में उतर जाते। बस में कैसे होता है, आ गया वो घंटी बज गई वृंदावन वाले उतर जाओ, ऐसे वो उतर जाते थे वृंदावन में। तो क्या वृंदावन में आनंद लिया, बहुत खाया पिया धमाल किया, लुका छुपी खेला, कभी कोई गेम बनाया, कभी कुछ बहुत सारे गेम खेलते थे वो, बहुत सारे गेम। जिस गांव में गेंद खेला तो उसका नाम गेंदोवा पड़ गया, हाँ एक कुंड के पास लुका छुपी खेली तो उसका नाम पड़ा लुकलुक कुंड। इतना आनंद है यहाँ पर, हर चीज में आनंद है, जो चीज कृष्ण करते हैं यहाँ पर उसमें इतना आनंद भरा हुआ है, इसलिए कहा गया कि नंदगांव से आनंद और कहीं नहीं, नंदगांव में केवल धमाल ही धमाल है, खाली झेलने का शक्ति चाहिए बस थोड़ा सा। हाँ तो फिर भेष बदलेंगे, फिर बोलेंगे तू राम बन जा, तू लक्ष्मण बन जा, मैं बाण मारूंगा, मैं रावण बनूंगा, फिर लीला करेंगे, हर प्रकार का आनंद लेंगे, बोले भूख लग रही है अभी बैठो बैठ जाएंगे कमलाकार बैठ जाएंगे, फिर सब टिफिन खोलेंगे, फिर चीना झपटी, फिर मूड आया तो फिर थोड़ा थोड़ा खा लिया, बच्चों को कैसा रहता है थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, बाद में उसी के साथ खेलने चालू करते हैं, लड्डू फेंकेंगे, सिर्फ कैच करेंगे, ये बच्चों का भाव होता है, सारे प्रकार का आनंद लेते हैं। और देवता लोग अचंभित रह जाते देख के उसको, अरे ये कैसा है, कैसा ये रिश्ता है इनका, क्या किया इन्होंने, इतने परब्रह्म जी परब्रह्म के पास इतने निकट हैं ये। तो ये सब नंदगांव का आनंद है। और नंद बाबा और उनके साथ में जो बड़े बड़े गोप हैं उनका भी बहुत विचित्र प्रेम है भगवान के साथ। तो छोटे उम्र में श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने बछड़ों का भार दिया था चलाने के लिए, तो उसका नियम था कि जब बछड़े निकल के गए नंद बाबा के घर के एकदम ऊपर के हिस्से में खिड़की में जाएंगे नंद यशोदा माई, और चारों दिशा में जहाँ तक देख पाएगी वहीं तक जाना है उनको, जहाँ तक यशोदा देवी की नज़र नहीं पड़ती है वहाँ से उसके पीछे नहीं जाना है। जब भी बच्चा है ना वो, जब भी वो लगेगा किधर है मेरा बालक, तो उसको जाके जाएंगे ऊपर देखेंगे तो दिखना चाहिए कि वो उधर है, वो उधर खदीर वन में है, ऐसा पता होना चाहिए। बार बार देखेगी जाके क्या एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, फिर भी किसी को भेजेगी ले मिठाई ले जा को खाने के बीच भूख लग रही होगी। और उसका नियम था कि लंच के समय लौट के आना है, लंच में बाबा के साथ भोजन करना है बाल लीला में। जब 5 साल की उम्र हुई तो फिर उनको बड़े गायों का जिम्मेदारी दिया गया, करोड़ों गाय, 108 ग्रुप थे उसके अंदर। आप बोलना चाहेंगे कौन से ग्रुप? 108 तो 108 तो मुश्किल है, लेकिन मेन मेन, हाँ, एक है सफेद गाय का झुंड, दूसरा भूरी गाय का झुंड, तीसरा काली गाय का झुंड, उसके बाद में सफेद पर ब्लैक डब्बे वाली ब्लैक डॉट्स, फिर वाइट पे ब्लैक डॉट, ब्लैक पे वाइट डॉट्स, फिर वाइट पे भूरे डॉट्स ब्राउन कलर के और भूरे पे वाइट डॉट्स, फिर जिसका चेहरा मृदंग की तरह है मृदंगिनी, फिर किसके चेहरे पर तिलक है ऑलरेडी बना हुआ तिलकिनी, फिर कोई ऐश कलर के धूरी, धूरी मतलब एकदम ऐश कलर के, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के गाय हैं, अलग अलग उसमें चिन्ह हैं, और 108 झुंड है ऐसे। तो ये जब देने का समय आया तो यशोदा माई ने उनको दो छतरी ला के दिया, दो जूता का जोड़ा जोड़ी ला के दिया, मतलब बेटा आप दूर जाओगे ना आज से अभी तो पता नहीं कांटे कंकड़ होंगे। तो कृष्ण भगवान बलराम सजदज के आए और उन्होंने बोला आपके पास सभी गाय के लिए जूता है ना, सभी जूता चाहिए ना, फिर खुद पहनेंगे तो गाय को नहीं पहनेंगे, तो मैया आपके पास सबके लिए जूता है ना और सबके लिए छतरी है ना, एक एक गाय के लिए, वो भी धूप में जाएंगे ना, तो वैसा नहीं है अपन कैसे बोलते हो मुंबईला, ये जानवर की थी तुमच्याकडे, आमच्याकडे 15 ढोर आहेत, ऐसा नहीं है वो घर के परिवार की तरह है, मुझे भक्ति बता रही थी ना, फैमिली मेंबर है वो घर में आएंगे गोद में बैठेंगे प्रेम से बात करेंगे आवाज़ देंगे बुलाएंगे, तो वैसे है वो। तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे आप जूता दोगे छतरी दोगे तो आपको मेरे हर गाय को छतरी और जूता देना पड़ेगा। यशोदा कहते मेरे पास इतना जूता और छतरी नहीं है, दो ही जोड़ी है लाया हूँ, ले तो ले लो, पर नहीं लेता हूँ मैं, छोड़ दिया उसको। तो गाय भी सुन रही है, गाय को पता चला कि भी लेने वाला नहीं है ये, बिल्कुल ज़िद्दी है। तो गाय जाने का समय होने के पहले ही चारों दिशा में गए सब गाय, करोड़ों गाय, पता नहीं कौन सी दिशा में जाएंगे आज, तो चारों दिशा में जाके अपने जो होते ना रेडीमेड जूते उनके इनबिल्ट, वो जूते लेकर ऐसा कूट कूट के कूट कूट के सब पत्थर से कंकड़ से कांटों से एकदम मट्टी बना दिया पूरा, फाइन पाउडर बना दिया पूरा उसका चारों दिशाओं में, फिर आके खड़े हो गए अपने अपने झुंड में। अभी कहीं चलो जहाँ जाएंगे तो भाई, क्योंकि उनको उनको चिंता है कि अरे हमारे लिए वो जूता नहीं पहन रहे हैं, हमारा तो इतना कड़क कड़क है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जूता से तो पत्थर भी आएगा बीच में तो पाउडर हो जाएगा उसका, लेकिन इसके पैर में अगर कोई लगा तो वैसे पैर रखते ही लाल हो जाते हैं उसके पैर, इतने कोमल इतने मक्खन की तरह मुलायम पैर है उनके, वो जब बाल लीला करते थे ना इधर उधर, तभी भी गोपियों के दिल में ऐसा दर्द होता था सोच कर कि पता नहीं कोई कांटा लग गया तो, ऐसा भाव था उनका। सोच सोच कर रोती थी वो, लगता तो नहीं था उनको लेकिन सोच सोच कर रोती थी कि होगा तो कैसे होगा। वो भी दूर जा रहे हैं तो गाय भी सोच रहे हैं कैसा होगा। तो कृष्ण के पैर को कहीं भी चोट नहीं आनी चाहिए, इसलिए सब जगह जगह पाउडर बना दिया। अभी आप बैठे हो ना, देखो आप जिस जगह बैठे हो हाथ लगा के देखो तो थोड़ा सा गीला है लेकिन देखो कितना मुलायम है वो, ठंडा है कि नहीं। जब वो सारी गायें जो है ना अपने कान्हा की प्रेम की वजह से वो मट्टियों को कूट रहे थे, तो कृष्ण के प्रेम की वजह से उनके थनों में दूध भी बह रहा था। आप लोगों से बहुत माताएं हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा जब आप गर्भवती होकर जन्म देती नए नए बालक को, समझो किसी कहीं जाना पड़ता है आपको, आजकल नौकरी करनी पड़ती है तो बच्चे को घर पे छोड़ के आना पड़ता है और दूध पीने का समय आता है और याद आती है तो तुरंत माता के दूध निकलता है। जहाँ पर बैठी है वहाँ पर, जहाँ पर काम कर रही है वहाँ पर बच्चे की याद से ही दूध आने लगता है, वात्सल्य है ना, वो प्रेम है। तो गाय भी उसी प्रकार से थी, वो भी वात्सल्य में थी कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण के बारे में सोचकर कूट रही है, तो साथ में उनके जो थन थे ना ऐसे इतने बड़े बड़े, और जो थन का जो दूध निकालने का हिस्सा है वो जमीन को टच कर रहा है, इतने बड़े, क्योंकि समाधान आनंद और प्रेम से भरे हुए सुरक्षित गाय थी वो, कोई उनको भय नहीं था कटने वाला कोई ऐसा असुरक्षित वाला, एकदम निश्चिंत होकर भगवान के साथ में रहती थी। इसीलिए इस भूमि का नाम ब्रज भूमि है। ब्रज की व्याख्या क्या है, जहां पर गाय निर्भय होकर विहार करती है, कोई उनको डर नहीं मन में किसी चीज का, मरने का तो छोड़ो कोई ईजा करेगा जख्म करेगा वो कोई भी डर नहीं उनके मन में, केवल प्रेम से भरा हुआ उनका मन, और थन भी दूध से इतने भरे हैं, कृष्ण की याद करते हमेशा टपकते रहता है दूध उसमें। इसलिए ब्रज की भूमि ऐसे मुलायम मक्खन जैसे पाउडर जैसे रज के बीच में दूध का सिंचन होने के बाद में एकदम मक्खन के जैसे होता है। ऊपर से दूध कैसा होता है, ठंडा होता है, दूध के द्वारा मिश्रित मट्टी में पाँव रखेंगे तो ठंडा लगेगा, मुलायम लगेगा। और तीसरी बात क्या होगी, निशान आएगा उसके ऊपर, वो गीला है ना अभी, गीले पे पाँव रखे तो पाँव का निशान आएगा। कृष्ण बलराम के पैर पड़ेंगे तो पैर का निशान आएगा, उनके पैर के निशान हमारे जैसे नहीं है, उसके ऊपर कई चिन्ह हैं, कई प्रकार के चिन्ह हैं, उसमें चक्र है, उसमें अंकुश है, उसमें फूल है, उसमें तुलसी है, उसमें वेदी है, शंख है, उसमें बाण है, धनुष है, कई प्रकार के दिव्य चिन्ह हैं उनके चरणों में। तो सभी गायों ने और ग्वाल बालों ने मीटिंग किया और ये तय किया कि आज के बाद ये जब चलेंगे ब्रजभूमि में तो सब जगह इनके चरणों के चिन्ह आएंगे, कोई भी इनके चरणों के चिन्ह पर पैर नहीं रखेगा, साइड से जाएंगे। सारे ब्रजभूमि में इस तरह से कृष्ण बलराम के चार चरण चिन्ह जो है, अनंत प्रकार के चरण चिन्ह सब जगह पर प्रकट हो गए। और जब पत्थर पे चढ़ते थे तो पत्थर पे जब चढ़ते थे तो पत्थर इंतजार करते थे पर्वत कब आएंगे हमारे ऊपर, जैसे ही ये आते थे इनके चरण कमल रखने के पहले ही वो मक्खन की तरह पत्थर मुलायम बन जाता था। अभी ऐसा सख्त बहुत सख्त है एकदम, लगेगा आपको चलने पर, लेकिन जैसे कृष्ण बलराम ने पैर रखा तो एकदम मक्खन की तरह मुलायम बन जाते थे। तो क्या होता था, उधर भी चरण चिन्ह आते थे, आगे गए तो पत्थर पत्थर हो गया वापस, लेकिन चरण चिन्ह के साथ हो गया। इस प्रकार से पत्थरों में और जमीन में और वनों में भगवान के चरणों के अनंत चिन्ह उत्पन्न हो गए और वही ब्रजभूमि के अलंकार हैं, इसके रूप में देखने लगे वो कि ब्रजभूमि का अलंकार है। वहां पर एक छोटी बठेन और बड़ी बठेन नाम का गांव है कुशी की तरफ, वहां पर कृष्ण बलराम जो है वो गाय के चराने के बाद बीच में विश्राम करते थे। तो बड़ी बठेन बड़े भाई की बठेन मतलब बलराम जी की बैठक, और छोटी बठेन कृष्ण भगवान की। तो वहां पर ये सारे ग्वाल बालों को भी चरण चिन्ह है, कृष्ण बलराम के भी चरण चिन्ह है, बहुत सारे भी लुप्त हो गए लेकिन जहां जहां भगवान ने खड़े होकर मुरली बजाया वहां वहां उनके चरण चिन्ह खड़े हो गए। गाय बाग बाग के आई के गाय के खुर के चिन्ह भी बन गए, लकुट के चिन्ह भी बन गए। तो ये सब साख्य लीला का आनंद है पूरा। और फिर ऐसे सब एग्रीमेंट करने के बाद फिर कृष्ण भगवान निकले गाते बजाते हुए। तो ये जो गौचारण की लीला है ये ब्रज नंदगांव की विशेष लीला है, दो तीन यहाँ की विशेष लीला है, सब सब तो लीला विशेष ही है लेकिन दो तीन बहुत ही हृदय द्रावक लीलाएं हैं। एक लीला है जब अक्रूर जी लेने आए उनको, ले जाने के लिए, तब बहुत करुण प्रसंग है उसका। सब लोग इतने रोए, गोपियाँ रास्ते पर बिखर गई, नंद बाबा रोने लगे, यशोदा बाई रोने लगी। तो एक प्रसंग है, और दूसरा प्रसंग है वो यहाँ पर नहीं हुआ है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही भयंकर दर्द हुआ उससे। वो प्रसंग ऐसा है कि जब अक्रूर वहाँ ले गए उनको, कंस का वध हुआ, सबका वध हुआ, तो वो अपने पिताजी और माताजी को मिलने गए, वसुदेव और देवकी को, क्योंकि बेचारी देवकी ने जन्म दिया था और दो मिनट के अंदर उसको भेज दिया गया, कोई प्रेम वात्सल्य का अनुभव नहीं कर सकी वो, जन्म होते ही तुरंत उसको त्याग करना पड़ा। तो उन्होंने तो देखा नहीं, बाल लीला, वो नटखट बोल और चलना, तोतले बोलना, वो सब कुछ देखा नहीं उन्होंने। सीधे बड़े देखा, 11 साल 52 दिन के उम्र का, और वो भी ऐसे वीर बन के कंस को मारा उसने, चरणों मुष्टिक को सबको मारा, वीरता का प्रदर्शन करते हुए कंस को बाल पकड़ के खींचा अखाड़े में, विजयी होकर अपने पिता के पास आए। तो दंडवत किया उन्होंने, बोला मैया आपको कुछ सेवा नहीं कर पाया आपकी, इतना दिन दूर रहा आपसे, जैसे होता है ना वो हॉस्टल में रहा बच्चा वापस आता ना SSC होकर, वैसे बोल रहे हैं वो, अभी आपके क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो वसुदेव जी बोले अभी यहीं रहो, आपको ना वो बहुत सारे संस्कार बाकी है ना आपके, गुरुकुल भेजना है आपको, काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, वो अभी करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, जैसे आपका कहेंगे मैं वैसे करूँगा। और नंद बाबा साथ में आए थे उधर, नंद बाबा उधर साथ में गए थे उनके, वो सुन रहे हैं कि इन्होंने पूछा क्या करूं, उन्होंने कहा यही रह जाओ, उन्होंने कहा हाँ, तो फूट फूट कर रोए वो उस समय। और ये खबर जब यहाँ आके सुनाई तो यहाँ के लोग भी फूट फूट कर रोए, क्योंकि वो उनके लिए निर्णय जो कृष्ण ने लिया वो बहुत ही दर्दनाक था। गए थे दो दिन में आने के लिए, वहाँ जाके बोले अभी मैं क्या करूँ, मैं यही रह जाता हूँ, वहीं रह गए। ये दूसरा प्रसंग है। और तीसरा प्रसंग है उनका, जब उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर जब आए थे यहाँ पर, तो तीसरा प्रसंग जो है वो नंदगांव वासियों के लिए बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। वो कृष्ण की याद करना, और कोई आया है कृष्ण को मिल, कृष्ण के पास से आया है, संदेश लेकर आया है, उसको अपने दिल की बातें बताना और अपने हृदय के भाव को प्रकट करना, ये बहुत उत्कट है। बहुत पता चलता है कि इनका प्रेम कितना गहरा है। एक कहानी सुना दूं क्या? लेकिन सुना नहीं चाहिए आप लोगों, हाँ सोएगा तो कहानी का लिंक टूट जाता है। खड़े होना है क्या? खड़े होना है क्या? लेकिन कहानी बड़ी करुण है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा बता दिया ऑलरेडी, वो नंद बाबा ने बोल सुना उसको कि अभी हम यहीं रहेंगे, ऐसे सुना उन्होंने। और अभी वो रहेंगे तो ठाकुर जी की इच्छा है, वो थोड़ी बोलेंगे नहीं 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 तुम ऐसे नहीं करना, हमारा क्या होगा, आप क्या ऐसे सोच सकते हो, हम आपको ले जाने के लिए साथ में आए लाए थे वगैरह वगैरह। लेकिन इनका पिता भी हो या माता भी हो या डांटने वाले पोजीशन में भी हो, उनका एक ही भाव है, कन्हैया को जो अच्छा लगे वही करना है, अपने मन की बात नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा निर्णय है जीवन में, याद रखना। हम लोग कितना भक्त भक्त अपने आप में बोलते हैं, बहुत सारा नाटक करते हैं हम लोग भक्ति का, लेकिन समय आने पर स्वार्थ का ही सोचते हैं। ये हमारा स्थायी भाव है, मतलब हमारा मूल स्वभाव है। और उनका स्थायी भाव क्या है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, कितने भी संकट आ जाए, उनका भाव एक ही है, उनको क्या अच्छा लगेगा वही करना है। अगर आज हमारे लिए दर्दनाक है वो, लेकिन उनको अगर अच्छा लग रहा है वसुदेव देवकी जी के पास रहना, तो हमारा भी ओके है उसके लिए। तो चलो, सब लोग निकलने का दिल नहीं हो रहा था, लेकिन निकलना चाहिए। तो नंद बाबा इतने दुखी थे कि वो एकदम धीरे धीरे चल रहे थे। उनको मतलब और तेज जाके मैं अभी किसको फेस करना है, पता है ना उनको, यशोदा माई को फेस करना है, तो इनको हिम्मत नहीं हो रही, क्या बताऊं क्या उसको मैं, क्योंकि उन्होंने भेजा था साथ में लाने के लिए। तो बीच में एक गाँव में रुक गए वो, उसका नाम उस समय कुछ और था, लेकिन उस गाँव में नंद बाबा आ गए, इसलिए इसने इतना सत्कार किया उनका, इतना गौरव किया कि अरे बाबा नंद हमारे महाराज हमारे गांव में आ गए, बहुत सत्कार किया। और सत्कार में तो लोग खुश होते हैं, लेकिन ये बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको वहां से निकलने का पांव उनके भारी इतने हैं कि आगे चल नहीं रहे थे, बहुत देर रुके वो अपने मन को संभालने के लिए। तो गांव का नाम पड़ा गौरव, जिसमें नंद बाबा का गौरव किया गया। फिर निकले वहां से और धीरे धीरे करके रोते रोते भारी हृदय के नंदगांव पहुंच गए। फिर नंदगांव पहुंच गए तो यशोदा माई बड़ी खुश हो गई, आ गए नंद बाबा, तो मतलब कृष्ण बलराम आते ही होंगे, मतलब ये वो बचपन है, बचपन के समय है उनका, तो थोड़ी सी घर पे आते हैं, पहले थोड़ा सा बाहर से आ रहे, फिर भी थोड़ा खेल के ही घर पे आएंगे, बाद में दोस्तों को मिलेंगे, उधर थोड़ा खेल खेलेंगे, थोड़ा सा इधर खेल खेलेंगे, इससे बातें करेंगे, उसकी बात करेंगे, उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, ऐसे करते करते बाबा पहले आए, सामान रख देंगे, लेकिन बालक बाद में आएंगे, ऐसा उनका भाव था। वो बहुत उत्सुकता में थी कि आ गए आ गए आ गए आ गए, बहुत दिन से नहीं थे यहाँ पर, आ गए आ गए। तो फिर पूछते हैं, अरे सुनो आ गए ना वो कृष्ण बलराम, तो कुछ बोल नहीं रहे, शांति से अपना काम यहाँ वहाँ रख रहे हैं, बोल रहे हैं, हाँ मैं जानती हूँ खेलने गए होंगे, आते ही होंगे, हाँ जानती हूँ मैं, कहाँ है वो, ऐसे अपने आप ही बट 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 करती जा रही है और एकदम आनंद से तैयारी कर रही है, और ये एकदम गंभीरता से अपना सामान वामान रख रहे हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, बहुत देर तक ये बोलती रहती है और वो कोई जवाब ही देती नहीं। फिर वो आती है, अजी सुना तुमने, कहाँ है कृष्ण बलराम? तो बुरी बात को तो ज़्यादा विस्तार से बोल नहीं सकते ना, वो आए नहीं। मैं जानता हूँ, जानती हूँ कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं जानती हूँ वो अभी खेल रहे होंगे, आप मेरा ऐसा ही मजाक कर रहे हो, नहीं यशोदा वो नहीं आए। फिर हंस गई, बोले ये भी कोई मजाक है, ये भी मजाक करने का समय है, ऐसे मत करो, बताओ कहाँ पर है वो। यशोदा मैंने कहा ना वो नहीं आए। और क्यों नहीं आए, सच बताओ क्यों नहीं आए? तो रोने लगे। फिर पूरा प्रसंग जो है बड़े मुश्किल से, जितना बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े शब्दों में वो प्रसंग बताया कैसे कैसे हुआ। तो यशोदा माता ऐसी आग बबूला हो गई, लाल लाल हो गई, ऐसा कड़कने लगी उनके ऊपर, कैसे आप छोड़ के आए उनको, कैसे आपका पैर कैसे हिला वहां से। तो उन्होंने कहा क्या करूं। वो गए वसुदेव के पास, देवकी के पास, शरण छिए उनके और पूछा आज्ञा, क्या आज्ञा है आपकी। उन्होंने कहा कि आपको गुरुकुल भेजना है तो यही रहना है। तो उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए सिर सर पे सर आंखों पर है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं मतलब क्या, बात करना था उनसे आपको, ऐसे नहीं हो सकता है, मैं साथ में लाया हूँ, साथ में ले जाऊंगा उनको, ऐसे क्यों नहीं कहा। बोले कैसे कहता तू, उनके तो बालक है, वो बेचारी उनके पास नहीं रहे, अभी वो माता इच्छा कर रही है, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो फिर वो और गुस्सा हो गई और बोलने लगे तुम कैसे पिता हो, तुम्हें कोई भावना नहीं है, तुम्हें कोई प्रेम नहीं है, अरे तुमसे बढ़कर तो दशरथ अच्छे थे, कितना रोए वो राम को खोते हुए, तुमसे बढ़कर दशरथ अच्छे थे, वो उनको पिता बनना की कला जानते थे वो, कि वो तो इतना रोए और मर गए अपने पुत्र की याद में, ऐसे सुना रहे। पता है कितना कठोर वचन बोल रही है, बहुत कठोर वचन बोल रही है, और एंड में इसका मतलब वो बोलते जा रही है, एंड में कहती है अरे अगर ऐसे उनको लिए बिना आना था, उसके अच्छा मर जाना अच्छा था, ऐसे बोल लेती हो। और नंद महाराज शांति से सुन रहे और केवल रो रहे हैं, और बहुत सारा बोलने के बाद में यशोदा बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो उसका जो क्रोध है, उसका जो प्रेम है, उसका जो वात्सल्य है, हर प्रकार की भावना वहाँ पर मिक्सचर हो रही है ना, उसको पता नहीं वो क्या हो रहा है, उसको ये बात सहन नहीं हो रही कि कृष्ण बलराम लौट के नहीं आए, उसको विश्वास नहीं हो रहा है। तो बोलते जा रही यहाँ तक एंड तक बोल दिया उन्होंने कि आप पिता नहीं हो, आपको वात्सल्य नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे पिता बनना है, आपके पास भावना नहीं है, आप भावना शून्य हो, आपसे बढ़कर वो दशरथ थे। बाद में बोले कि तुम मर क्यों नहीं गए भाई, हाँ क्यों जिंदा लौट के आए यहाँ पर। तो जब वो बेहोश हो गई तो उसको होश में लाया गया, तब नंद महाराज बोलते हैं देखो यशोदा, जब उन्होंने ये बात कही अपने माता पिता से, तो जब मैं उनसे विदा लेने गया तो कन्हैया ने बताया कि मैं इनका कर्तव्य पूरा करके लौट के आऊँगा, जो भी इनकी इच्छा है वो पूरी करूंगा और फिर मैं लौट के आऊंगा। तो ऐसी विदा लेकर मैं आया। तो कहते हैं यशोदा, मर जाना बहुत आसान बात है, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं वहीं का वहीं मर जाता, लेकिन उसने कहा था ना कि मैं आऊँगा, अगर मैं अपनी भावना से मर जाता और बाद में वो आता तो पूछता नहीं था क्या बाबा कहाँ है, तो उस समय उस पर क्या बीतती। तो यशोदा, हम दोनों को जिंदा रहना है, मरने से छुटकारा नहीं पाना है हमको, तब तक जिंदा रहना है जब तक वो आएगा। अब जब आएगा तो उसको हमें देखने, दोनों के देखने की खुशी प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं मरा वहां पर। ये इनका प्रेम है, मतलब उनके लिए अपनी भावना के वजह से मर जाना ये स्वार्थ की बात हो गई कि आई एम सो इमोशनल अबाउट इट, आई वांट टू डाई, खुद का ही सोच रहे हैं। लेकिन इसमें अपने इष्ट कृष्ण के बारे में सोचना, कितना गहराई में सोचते हैं वो, इतना विचार दुख में भी आना कितना मुश्किल काम है। अभी आराम से आप ग्रंथ पढ़ रहे हो और सिद्धांत पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ समझ सकता है कि हाँ भाई मरना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, दुख में भी मन को शांत रखना चाहिए और योग बल से मन को स्थिर रखते हुए अपनी सेवा को करते चाहिए, ये तो प्रवचन में सुनना अच्छा रहता है। लेकिन जब बीतती है अपने ऊपर, वो भी ऐसी बीतती है जैसे कि जान जा सकती है, उस समय भी वही सोचना है जो अपने जिसकी सेवा करने के लिए हम जिंदा है उसके लिए सोचना है। और जब मर जाना आसान दिखता है, जिंदा रहना मुश्किल लगता है, फिर भी हमको जिंदा रहना है। ये नंद महाराज है और ये यशोदामाई है। तो यशोदामाई तो ऐसे दिल से नहीं बोली थी कि तुम बेकार आदमी हो, वो तो ऐसे रूप गोस्वामी समझाते हैं कि प्रेम की एक परिसीमा है, जब प्रेम बहुत पराकाष्ठा में होता है तो आदमी गाली भी देता है और कुछ भी बक देता है, वो प्रेम की वजह से, वो नंद बाबा के वजह से, अनादर की वजह से नहीं था, उनका इंसल्ट करने की भावना नहीं थी, वो तो वेट कर रही थी भाई कभी उनको गाली दूं मैं, ऐसा नहीं था। फिर उनके चरणों में गिरी हो, क्या करें। उसके बाद जो रोना शुरू हुआ उनका, नंदगांव से नदियां बहने लगी अश्रु की, क्योंकि जब उद्धव जी आए थे उनको मिलने के लिए तो पूछते हैं वो कि नंद भवन किधर है, तो कहते हैं वो पहाड़ पर है। तो पहाड़ पर किधर है, तो देखिए दो नदियां हैं ना, इसके किनारे किनारे चले जाना, वो नदियां ऐसे ऊपर से मिलेंगी आपको, आप चढ़ते जाना फिर एक घर आएगा, वही नंद भवन है। तो ये चढ़ते 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 गए ऊपर ऊपर नदी किनारे, दोनों किनारे देखा तो दो नदियां घर से बाहर आ रही है, तो घर पे चले गए तो देखते तो क्या, दोनों के आंखों से निकले हुए अश्रुओं से दो नदियां बनकर बह रही है पहाड़ से नीचे तक। बोले ऐसे कैसे, जब से कृष्ण बलराम लौट के नहीं आए तब से रो रहे हैं, उनके अश्रु रुके ही नहीं, पहले भी आंखें भरी रहती थी प्रेम अश्रुओं से, अभी आंखें बह रही है विरह के अश्रु से। सवरे तेरे ही लिए ये बरसते आंसू, रुकने पर नहीं रुकते ये हमारे आंसू। ऐसे गीत गाते हैं गोपियां और सब बाल बाल, सब रो रहे हैं। तो इनका इतना प्रेम था भगवान के ऊपर, इतना प्रेम था। तो ये कुछ झलकी है इसकी, हाँ ये तो इतना गहरा प्रेम है हमारे लिए समझना खाली कथा में ठीक है, गीत भी गा सकते हैं, समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमको नंद बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी होगी, यशोदा माई को प्रार्थना करनी होगी। यशोदा माई वात्सल्य रस की सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, सबसे श्रेष्ठ, नंबर दो की देवकी हैं, नंबर तीन के नंद महाराज हैं, और उसमें कुंती देवी भी आती है। उसके बाद में कुंती देवी के पहले वो अभिनंद बाबा, सुनंद बाबा और उपनंद बाबा, इनकी पत्नियां और वो भी आ जाती हैं। और कुंती देवी वात्सल्य भाव में, ऐसे आठ लोग हैं लाइन से जो भगवान को उच्चतम स्तर पर वात्सल्य प्रेम करते हैं। एनीवेज, तो यहाँ की लीला बताना भी जरूरी है ना। तो ये नंद बैठक है, यहाँ का भी एक बहुत सुंदर भाव है जो आपको सबको पकड़ना जरूरी है। ये सुबह को छोड़ दिया ना उनको गौ चराने करने के, तो फिर वो कैसा है ना, अभी सब गाय वो गौवे खड़ी है, उनका अलंकार किया हुआ है, सब लोगों को शॉल पहना हुआ है, पैर में घुंघरू है, गले में घंटा है, सिंगों पर उस सोने की कैप लगाई है, ऐसा बहुत सारा तिलक लगाया है, हाथ पे कुमकुम के धब्बे, हाथ के बॉडी पर, सब उनका अलंकार है, सजा धजा कर गाय, एक एक गाय को इतने सारे अलंकार है, वो जब चलती थी टिंगड़िंग 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 चुम 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 टुम टिंगड़िंग टिंगड़िंग, पूरा इतना इतना दिव्य म्यूजिक है उसका। और जो चलने लगते हैं, सब कन्हैया जी को भी मेकअप करके अच्छी तरह से भेजा है, श्रृंगार करके, बलराम जी भी तैयार है, अभी जाने लगे हैं, तो यशोदा देवी उसके पीछे पीछे जा रही है। तो कुछ चार कदम चली तो कन्हैया ने बोला, मैया जाओ अभी आप, हम जाएंगे। तो मैया क्या बोलेगी, तो एक दर रुक जाती है, फिर आगे चलते हैं, फिर मैया चलने लगती है, फिर कहते हैं क्योंकि okay, बच्चे कैसे हैं, थोड़े बड़े होने के बाद में उनको ज़्यादा इंटरफेरेंस अच्छा लगता नहीं है, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, अभी बस हो गया आपका, मेकअप हो गया, खाना पीना हो गया, नहलाना हो गया, आपका काम हो गया, अभी हमको छोड़ दो अपने हाल पर, अभी जाने दो। तो बाद में फिर जाओ भी ना अभी आप, कितनी देर आओगे हमारे साथ, हमको जाने दो, हम आएंगे लौट के। फिर वो ऐसे ही रुक जाती है आँखों में आंसू लेकर, और सब लोग ऐसे, अभी इसमें बीच में मैं खड़ा हूँ ऐसे, सब यहाँ से आगे से पीछे सब गाय जा रही है, कन्हुआ बोलो आगे जा रहे हैं, जा रहे जा रहे, सब लोग ये पीछे के सब लोग सारे रंग के अलग अलग, ये लोग पीले, ये सब लोग जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, और जो सब लोग जाते हैं तुम अकेले पीछे रह जाते हो, सोच सकते हो ऐसे, बीच में खड़े हो और आपके चारों तरफ से गाय और गाल बाल जा रहे हैं गीत गाते हुए, और फिर सब गए आपके आगे, आप वहाँ खड़े हो गए, और फिर वो धीरे धीरे उधर से गेट से आगे 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 आगे, फिर कुछ नहीं दिखता है, फिर कुछ धूल दिखते खाली बस। तो फिर बड़े ही भारी अंतकरण से वो चले जाती है वापस, और फिर क्या करती है, हर आधा घंटे में खिड़की में देखती है सूरज कितना ऊंचाई में है, तो उसको पता है अभी आएगा तो सूरज ढलेगा तभी आएगा, तो बार बार अप एंड डाउन, आंखों में आंसू भरे हुए प्रेम के, ओनली अप एंड डाउन, अपने अप एंड डाउन, चूल्हे से, रसोई से, काम से, गौशाला से, ऊपर ऊपर से खिड़की से देखना है कितने ऊपर है सूरज अभी तक, फिर बीच में सूरज को गाली देती है, इतना स्लो चलता है, थोड़ा फास्ट चल कब नीचे उतरेगा तू कब मेरा लाला आएगा लौट के सूरज क्या करेगा, उसका गति तो फिक्स है ना, उसका मीटर का जो है ना स्पीडोमीटर फिक्स करके रखा है, वो तो नहीं गति में चलता है आपको जल्दी में हो या देर से हो, जब प्रियतम को मिलते हो तो सोचते हो कितने जल्दी जा रहा है, थोड़ा धीरे जाओ ना इतनी जल्दी क्या है, रोज का तो काम है, रुक जाओ दो मिनट के लिए, आराम कर लो, हमको बैठना है आपके साथ। और नंदम बाबा के घर पे क्या हो रहा है, इतने स्लो क्यों चल रहे हो तो आखिर में सूरज जब नीचे आने लगता है तो पता है कि अभी निकल गए होंगे लौट के, तो इनको रहा नहीं जाता है अभी, तो तुरंत सखी हो आ जाओ, तुरंत थाली बनाओ, प्रसाद बनाओ, तिलक तिलक बना दो, दीपक चला दो, रंगोली लगा दो, मिठाई संदेश लेके आओ, थाली बनाओ, फूलों की माला बनाओ, सारे आदेश, सब लोग भाग रहे हैं, थालियां बना रहे हैं, बहुत सखियां सज धज के, चलो कपड़े पहनो, तुरंत लहंगा फहरिया पहनो, सज धज के फूलों की माला पहनो, आ रहे हैं ऐसे करके तैयार हो जाते हैं, फिर सूरज ढल जाता है और उनको दूर दिखाई पड़ते हैं, धूल उड़ रही है, क्या बोलते हैं उसको, गोरज मुहूर्त, जब शाम को गो धूली ऐसे उड़ जाती है उस समय गाय लौट के आ रही है, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है शादी वादी करने के लिए, गोरज दिखाई दी, डालो माला, हरि बोल, तदेव लग्नम तदेव लग्नम कर दो, सावधान हरि बोल गोधूली मूर्त कहते हैं उसको, बहुत पवित्र मूर्त है वो। तो जैसे दिखाई पड़ते हैं तो वो पहाड़ पर खड़े, उनको रहा नहीं जाता है, अरे कौन इंतजार करेगा जब तक तो वो पहाड़ चढ़ेगा, चलो बाबा ना, अरे आप भी हम भी सब लोग उतरेंगे नीचे, हमको भी रहा नहीं जा रहे हैं, दर्शन नहीं हुआ इतने दिन इतने देर से। तो ये सारा सामान लेकर जो है वो नंद भवन से आप लोग जैसे उतरे वैसे उतर के आ जाते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं, ये नंद बैठक है, और यहाँ पर ऐसे बैठ के वेट कर रहे हैं, द फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट। फिर वहाँ से कैसे, और वो भी कैसे हैं, बड़े चतुर हैं, वो भी एक हॉल्ट लेते हैं बीच में एक हॉल्ट लेते हैं उधर कदम के पास, और कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वह मुरली बजाते हैं, सारे गायों को बुलाते हैं, कदम ब चढ़ कान बुलावत गाय, कदम के ऊपर चढ़ के सब गायों को बुलाते हैं, छठवा नोट बजाते हैं, सारी गाय भाग भाग के आती है, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर मुरली बजाते हैं, फिर गीत गाते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पर आ जाते हैं। जब आते हैं तो भाग के बाबा के गोद में चले जाते हैं, एकदम भाग के। कभी आपके बालक आपके गोद में भाग के आए क्या, धड़ाड़ करके पेट में जोर से एकदम, तो उसके लिए भी पहले सांस रोक के रखना पड़ता है, आ रहे हैं अभी अटैक, तो पकड़ के बैठना पड़ता है, फिर एक गोद में बैठ जाते हैं, एक गोद में बैठ जाते हैं। आपने फोटो को देखा क्या ठीक से, एकदम ठीक से देखा क्या? कुछ बातें ऐसी है जाते वक्त दोबारा देखना। वैसे ही राइट में कृष्ण भगवान बैठे हैं, लेफ्ट में बलराम जी भैया बैठे हैं, और ऐसे बैठे ना वो मुंह करके, ऐसे ऐसे सामने नहीं बैठे हैं, ऐसे एंगल में बैठे हैं, और कृष्ण भगवान का जो राइट पैर है वो बलराम जी के लेफ्ट पैर में ऐसा जुड़ा हुआ है ऐसे, और बलराम भैया जी का जो बायां हाथ है, नहीं दायां हाथ है, उसमें भी मुरली है, और कृष्ण बलराम के दायां हाथ में मुरली है, और दोनों मुरली के हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं, और मुरलियां ऐसे ऐसे क्रॉस में दोनों के हाथ में है, दोनों के हाथ जुड़े हुए हैं। ऐसा वही बैठ सकता है जिसको प्रेम होता है, अगर प्रेम नहीं होगा तो पैर ऐसे लंबे करके बैठेगा, वो भी अपने पैर इकट के बैठेगा, कोई हाथ वापस नहीं मिलेगा, गोदी में बैठेगा लेकिन तू दूर बैठ मैं दूर बैठता हूँ। तो इनका जो बैठना है ना, जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, वो उनका प्रेम का लक्षण है। और बाबा के चेहरे के भाव देखा आपने, ऐसे ना प्रेम से बैठे, आ गए मेरे बालक, ऐसे उनके हाथ देखे आपने, दोनों हाथों में ऐसे अंगूठियाँ भरी हुई है, और दोनों हाथ से अपने दोनों बच्चे के कंधे पकड़ के रखे ऐसे, उन्होंने सीने से लगाए रखे, अब पोज दे रहे हैं ऐसे। इतना सुंदर चित्रपट है ये, बहुत प्राचीन चित्रपट है। तो इस चित्रपट का रहस्य ऐसा है कि ये जो समाधि एक एक बाबा की है, हरिदास बाबा जो ग्रीन दरवाजा है ना, वहाँ पर देखो बाबा चल के आ रहे हैं, उसके पीछे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यहाँ पर हरिदास बाबा रहते थे। तो हरिदास बाबा को स्वप्न में ये पूरा लीला दर्शन हुआ कि कृष्ण बलराम भाग के आ रहे हैं, बाबा के गोद में बैठे हुए हैं। तो फिर उन्होंने जो उनको स्वप्न में दर्शन हुआ उसकी प्रेरणा से वे चित्रपट बनवाया, और फिर यहाँ पर विराजमान किया है, वही ऑल्टर में है। हरिदास बाबा का जो दर्शन हुआ, दृष्टांत हुआ, उसका दर्शन है वो। तो आने के बाद क्या होता है, गोद में आने के बाद में तो दोनों बोलने लगते हैं, बाबा पता है आज क्या हुआ? तो वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा 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 ऐसे ऐसे, किसकी सुने, इसकी सुने कि उसकी सुने, उसको भी बोलना है, इसको भी बोलना है, और बाकी लोगों को भी बोलना है क्या आज इसने ना अरिष्टासुर को मारा, आज उसने किसी को मारा, अरे वहां से बैल आया, उसने उसने ऐसे मुक्का मारा, उसको हवा में उठाया, घुमाया, पिटाया, सब लोग साथ में बोल रहे हैं, होता है ना ऐसे, आपके दो तीन बच्चे होंगे तो सब स्कूल से आते हैं, सब लोग साथ में बोलते हैं, अरे किसकी सुनूं, लेकिन वो ऐसा बोलते नहीं, हे चुप रहो कितना बड़बड़ करते हो, हे कोई बात करो, ऐसा माँ कभी बोलती नहीं है, वो बड़े प्रेम सबको देख के सबकी सुनने का प्रयास करती हो, प्रेम होगा तो ऐसे है। समझो घर की बाई होगी और घर की बाई को सब चार बच्चे सुना रहे हैं, हे चुपचाप बैठो बकवास मत करो, ऐसे बोलेगी वो, फिर माँ आएगी तो सब जो बच्चों को गोद में लेगी, हाँ कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई कंधे में बैठा है, और सब लोग कुछ सुना रहे हैं माँ को, और माँ के अच्छा 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 हाँ तुम अच्छा 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 अच्छा, ऐसे होता है वो। तो ये भाव को समझना चाहिए, प्रेम के भाव को। तो यहाँ पर वो सब सुनते हैं प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो ऐसे मतलब पात्र के बाहर बहते ना वो ऐसे वो लस्सी, वो पहले सुन लेते हैं पूरा जो भी है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, फिर उनका आरती उतारते हैं, फिर उनको माखन मिश्री खिला देते हैं, फिर उनको बड़े प्रेम से दुलारते हैं, फिर गीत गाते हुए यहाँ से नंद भवन जाते हैं, फिर नंद भवन जाने के बाद में फिर वस्त्र उतार के उनको स्नान कराते हैं सुगंधित द्रव्य से, मालिश होता है पहले तेल से, फिर स्नान कराते हैं, फिर नए वस्त्र पहनाते हैं, फिर गीत गाए जाते हैं, फिर आखिरी भोजन, और फिर क्या होता है माधवानंद जी, फिर क्या होता है, सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है। याद आ रहा है कुछ आप लोग बोलेंगे तो कम से कम आप सोएंगे नहीं, और क्या बोलो, सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, तेरी मैया सुलाती है, चंदन का बना पलना, अरे चंदन का बना पलना, रेशम की बनी डोरी, माँ तुझको सुलाती है, तू सो जा मेरे प्यारे। अरे प्रेम से गाओ, प्रेम से, तू सो जा मेरे प्यारे, जब होगी सुबह की बेला, जब होगी सुबह की बेला, मैं तुझको जगाऊंगी, माखन और मिश्री का तुम्हें भोग लगाऊंगी, माखन और मिश्री का तोहे भोग लगाऊंगी, सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, इसके बाद में सारा म्यूजिक बंद, फिर सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा सो जा। कितना सुंदर लीला है, देखो सोचो ना, प्रेम है हर जगह पर, हर गतिविधि में प्रेम है, हर गतिविधि में चिंतन है, गहराई है, प्रेम है, ये जो सब जीवन है। और जीवन में क्या है, और लोगों को क्या चाहिए, आपको क्या हलवा चाहिए, चूड़ क्या जलेबी चाहिए, उससे खुशी नहीं मिलती है, तो दुकान में मिल जाती है, इसमें कुछ मज़ा नहीं आता है, माँ प्रेम से खिलाती है तो आनंद आता है। सब लोग उस प्रेम के भूखे हैं, है ना। आप लोग गांव जाएंगे और वो बाजरे की कड़क कड़क रोटी खाएंगे, लेकिन इतना आनंद आएगा आपको कि मैया ने हाथ से बनाया है, बचपन में खाते थे, हाँ वो मेथी के लड्डू जो पालघर में मिलते थे, है ना। फिर वो मेथी के लड्डू में कोई विशेष नहीं है, कड़क कड़क होता है, वो दांत पे टूटता भी नहीं है, लेकिन वो आई ने बनाया है, उन्होंने भेजा है, वो खाते थे उसको याद करते हुए। और वो चावल की भाकरी और ग्लास में निकाला हुआ गाय का दूध, सब ग्लास पकड़ के एक ग्लास वापस दूसरा और ग्लास ही लेके आएंगे वैसे उसको, ऐसा है सबको। तो हम लोगों को भी ये सीखना है यहाँ पर आकर, केवल कथा नहीं सुननी है, ये भाव जो प्रेम का है ना, वो देंगे एक दूसरे को तो ही सब लोग आनंद रहेंगे। बाकी पैसा वैसा सब कुछ जो आएगा चला जाएगा, कपड़े भी नए खराब हो जाएंगे, हाँ हमारा जो कीर्ति शोहरत इज्जत जो है वो भी एक दिन रिटायर होने के बाद में कोई पूछेगा नहीं। प्रेम रहेगा तो लोग साथ में रहेंगे, प्रेम से लोग जुड़े रहेंगे, तो ये नंद भटक का भाव है, हाँ? प्रेम से ठाकुर जी का सेवा करने का। उसके आगे ये कुंड है, ये कुंड जो है वो नंद कुंड है, नंद बाबा के कई कुंड है, राजा है ना वो, तो एक कुंड ये है, वहाँ एक कुंड है यशोदा कुंड, आप लोग गए ना वहाँ पर, वो नरसिंह बाबा के मंदिर गए ना आप, नरसिंह भगवान के, वो जब भी कृष्ण भगवान पर कोई राक्षस का हमला होता था और वो सुनते थे कि आज ऐसा ऐसा हुआ, खबर मिली ग्वाल वालों ने बताया आने के बाद में, वो तुरंत वहाँ पर नरसिंह भगवान के मंदिर में लेके जाकर उनकी पूजा करवाते थे। वो होने के बाद तुरंत गाय के गौशाला में लेके जाकर उनको बछड़े के पूंछ को पकड़कर सारे शरीर को स्पर्श करते थे, भगवान के नाम का मंत्र बोलते हुए इधर सब पूरे केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, सीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, पद्मनाभाय नमः, वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः, सब जगह पर गाय का पूंछ लगाकर ब्राह्मणों को बुला बुलाकर मंत्र बुलवाकर उनको सुरक्षित करने का प्रयास, सुरक्षा कवच, फिर दक्षिणा दान करके पूजा यज्ञ करके फिर आराम करते थे। वो नंद बाबा के नरसिंह भगवान हैं जिनके लिए प्रार्थना करते थे। तो अपने माठ देखा ना, माठ देखा कि नहीं देखा? अरे कई थे ऐसे पहले, आप 6 फुट आदमी नीचे बैठ सकता है उसके अंदर जाके, इतने बड़े माठ, उसमें वो दूध दही संभाल के रखते थे जमीन के अंदर। उधर उड़पी में भी ऐसा ही है, मध्वाचार्य की माता भी जमीन के अंदर पूरे स्टोन के घड़े में दही मक्खन जमा करते थे। फिर उसके बाद में अपने यशोदा कुंड पे आए ना, उधर क्या है वो यशोदा माता का कुंड है, वो भी रानी है ना, यशोदा रानी, उसके भी कई कुंड है, और एक और कुंड है नंद सरोवर, उसमें भी उसका एक जगह है नंद यशोदा घाट, ऐसा राजा का ठाट होता है, कई जगह पर कई चीजें होती है। तो जब कृष्ण और बलराम छोटे से थे तो रोहिणी और यशोदा उन दोनों नन्हे नन्हे बालकों को साथ में लाती थी और यशोदा कुंड पे स्नान किया करती थी, लेकिन कोई भी बच्चा जीवन भर माता के से हाथ से स्नान नहीं करवाता है। तो ये जब थोड़े बड़े हो गए ना तो गोपियां चर्चा करती हैं, रोज बताती है कैसे कैसे हुआ। तो एक दिन यशोदा माता बताती है सर रोहिणी दी को, मैं देख रही हूँ आजकल जब मैं उसको ले जाती हूँ तो बड़ा संकोच करता है वो, जब मैं उसके वस्त्र उतारने का प्रयास करती हूँ तो बड़ा संकोच करता है, और उसके कपड़े भी अभी टाइट होने लगे उसको, और शर्माता भी है, दूर भाग जाता है। तो फिर बाकी लोग कहते हैं हाँ अभी तो बड़ा हो गया है वो। फिर एक दिन कहता है कि मैया मुझे अपना कुंड बना दो, मैं भी अपने कुंड में नहाऊंगा। तो उसका आदर करते हैं और राजा नंद महाराज उसके लिए उधर एक और कुंड बनाते हैं, कृष्ण कुंड। तो ये क्या करता है, सारे पहले की विधि मैया से करके लेता है, फिर भैया को लेकर वहाँ जाता है, वहाँ स्नान करता है, फिर आगे आके आगे की विधि मैया से कराता है। तो यशोदा कुंड का भाव वह है कि वो जब तक छोटे से थे तो यहाँ पर स्नान किया करते थे, और कृष्ण कुंड जो आशीश्वर के रास्ते पर आता है तो वहाँ पर बड़े होने के बाद में अपने अपने दोस्तों के साथ स्नान करने लगे। पौगंड अवस्था कहते हैं उसको, जो संक्रमण ट्रांजिशन स्टेज। तो आइए सब मिलकर श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करें, नंद महाराज को प्रणाम करें, इनके प्रेम को प्रणाम करें। श्री कृष्ण बलराम की, नंद महाराज यशोदा माई की, नंद बैठक धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे श्याम।